परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में यहेजकेल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और महिमा। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन को सुनने और उसमें से सीखने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यहेजकेल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर के दास यहेजकेल के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और उसने इसराइलियों के साथ में परमेश्वर के वचन को बांटा और बड़े ही नाटकीय तरीके से उनके बीच में वचन को रखा। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आज हमें यहेजकेल के द्वारा से क्या बताना चाहता है। तो आइए, इससे पहले कि हम अध्ययन में आगे जाएं, हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम सब दूर में रह करके भी एक साथ आपके जीवित वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। इस समय जब हम आपके साथ आपके वचनों को बांटना चाहते हैं, आपके लोग सुनना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हम आपके वचन को सुन करके ग्रहण कर सकें, उसके अनुसार से चल सकें। हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं और निराश और परेशान हैं। पिताजी, आप उन्हें छुए, चंगाई दे, उन पर कृपा दृष्टि करें, ताकि हर एक प्राणी आप में आनंदित होने पाए। आज के वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। यहेजकेल की पुस्तक उसके 6 अध्याय से हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं, जिसका विषय है यरूशलेम पर तलवार, बचे हुओं का उद्धार। यहेजकेल की पुस्तक अत्यधिक व्यवस्थित है। अब तक हम यरूशलेम से संबंधित भविष्यवाणियों को देख रहे थे, परंतु अब वह संपूर्ण इसराइल प्रदेश के विषय भविष्यवाणी का वचन सुनाएगा। पूरे देश को दंड दिया जाएगा। यहेजकेल नबूकदनेस्सर द्वारा बंदी बनाकर ले जाने वाले दूसरे दल में था। वे बेबीलोन के दास थे जो कबार नदी के तट पर खेत में मजदूरी का काम करते थे। कबार नदी पारात महानदी की उपशाखा थी, तथापि अधिकांश जनता अभी स्वदेश में ही थी और यरूशलेम अभी भी अछूता था। झूठे भविष्यद्वक्ता प्रजा को बहका रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक होगा और बंदी शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। यशाया ने तो स्पष्ट कह दिया था कि उन्हें दासत्व में रहना होगा और यिर्मयाह ने भी स्पष्ट कहा था कि उन्हें 70 वर्ष दासत्व में रहना होगा, परंतु वे उसकी बात नहीं सुनते थे। वे झूठे भविष्यद्वक्ताओं की बातें सुनते थे क्योंकि उनका संदेश अधिक सुहावना और आशावादी था। मेरे प्रियों, मैंने अपने सेवा काल में मनुष्यों में ऐसा ही स्वभाव देखा है। मैंने भविष्यद्वक्ताओं से दंड के बारे में उपदेशों की एक श्रृंखला का प्रचार किया तो कलीसिया का एक माननीय सदस्य अलग हो गया। उसने कहा, मैं शांति पाने आराधना में आता हूं, परंतु मुझे शांति नहीं मिलती है। वह परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहता था। मुझे आगे चल करके पता चला कि उसके व्यवहारिक व्यवहार में उसे शांति की नहीं दंड के संदेश की आवश्यकता थी। ये संदेश उसके विवेक को स्पर्श कर रहे थे। एक महिला ने आराधनालय में आना बंद कर दिया था। उसका कहना था कि मैं कभी कभी उसके दिल को दुखी करता हूं। अब वह उस कलीसिया की आराधना में जाती है जहां प्रचारक उसके मन को प्रसन्न करता है। सच तो यह है कि जिस कलीसिया में अब वह जा रही थी वह एक पंथ था और प्रचारक वचन के प्रचार की अपेक्षा सिखाता था कि मनुष्यों पर प्रभाव कैसे डालें और मित्र कैसे बनाएं। वह सकारात्मक विचार पर बल देता था कि अच्छी अनुभूति करो तो आपको अच्छा लगेगा। मैं कहता हूं कि यह परमेश्वर का वचन नहीं है। मेरे मित्रों, अध्याय 6 और 7 में दंड संबंधित 2 संदेश हैं। अब यहेजकेल संपूर्ण देश को संदेश देगा कि मूर्ति पूजकों का मारा जाना और देश का उजाड़ा जाना आवश्यक है। आइए हम देखेंगे यरूशलेम पर तलवार। यहेजकेल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। इस पद में उसका पहला संदेश आरंभ होता है। अध्याय 7 में दूसरा संदेश है जो इसी प्रकार आरंभ होता है। 7 अध्याय के 1 पद में, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। जी हां, वे यहेजकेल की बात पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु यहेजकेल कहने से नहीं चूकता था। मैं तुम्हें न तो अपने विचार सुना रहा हूं, न ही तुम्हें अपनी आशा की हुई बातें सुना रहा हूं कि मैं चाहता हूं ऐसा हो। मैं तुम्हें यहोवा परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं। मेरे प्रियो, यहां ध्यान देने योग्य एक बात और है जो दोनों संदेशों के अंत में है। तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया कि वे जान लें कि यहोवा ही प्रभु है। परमेश्वर के दंड का एक उद्देश्य यह भी है कि हम जानें कि परमेश्वर पवित्र है। इस संसार को यह बोध होना आवश्यक है कि परमेश्वर पवित्र है। हम बहुत बल देकर के कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। यह सच है कि परमेश्वर प्रेम है, परंतु यह आधी बात ही है। हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना है। परमेश्वर पवित्र है और वह पाप को दंड देता है। यदि आप उसकी आज्ञा ना माने, उससे फिर जाएं, उसका इनकार करें और उसके उद्धार को आप तुच्छ जानें, तो एक ही विकल्प रह जाता है, दंड, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। मनुष्य आज बहाना बनाता है। वे स्वीकार करना नहीं चाहते हैं कि वे पापी हैं। वे परमेश्वर को जगत से वियुक्त करके कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है। एक अति बुद्धिमान व्यक्ति ने परमेश्वर के न होने को सिद्ध करने का प्रयास किया। उसका वाद या तर्क इस बात पर आधारित था कि इब्रानी धर्मशास्त्र का परमेश्वर उसकी चुनी हुई प्रजा का विश्वास योग्य रक्षक है, परंतु लगभग 60 लाख यहूदी नाजियों के हाथों से मारे गए थे। उसने लिखा, आज वाचा के परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए आपको यह निश्चय करना होगा कि उनको सृजनहार ने एडोल्फ हिटलर को अपने क्रोध की लाठी बनाया और अपनी प्रजा को मृत्यु के शिविरों में डलवाया। मैं इस बात पर विश्वास करने में पूर्ण रूपेण असमर्थ हूं। यहां तक कि अस्तित्ववादी के विश्वास का कदम भी ऑस विस्टस के बाद इस मृतक परमेश्वर को पुनर्जीवित नहीं कर सकता। यह युवा रब्बी परमेश्वर की मृत्यु को एक सांस्कृतिक घटना कहता है। उत्कंठा और दुख के साथ वह कहता है कि परमेश्वर नहीं है, क्योंकि वाचा का परमेश्वर इसराइल की रक्षा करेगा और उसे किसी प्रकार की हानि होने ना देगा। क्या मैं कह सकता हूं कि उसने एक बात पर ध्यान नहीं दिया जिस पर यहेजकेल ने ध्यान दिया, कि इसराइल की कोई न कोई तो ऐसी चूक होगी जिसके कारण उन्हें दंड मिला। उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़कर उसका इनकार किया था। उन्हें विशेष सौभाग्य प्राप्त था और उस सौभाग्य के निमित्त उन पर एक उत्तरदायित्व था जिसकी पूर्ति करने में वे चूक गए थे। मेरे प्रियो, यहेजकेल कहता है कि परमेश्वर उन्हें दंड दे रहा है कि वे जाने परमेश्वर पवित्र है। उसका दंड निश्चय ही भयानक होता है। दूसरा क्रंथियों की पत्री 5 अध्याय उसके 11 पद में पौलुस कहता है, इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। यहेजकेल को परमेश्वर की पवित्रता का बोध आरंभ में ही हो गया था, इसलिए उसने मनुष्यों को समझाने की सेवा में स्वयं को भी अर्पित कर दिया था। यहेजकेल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, अपना मुख इसराइल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, संपूर्ण देश को दंड दिया जाएगा। तब लिखा है यहेजकेल 6 उसके 3 पद में, और कह, हे इसराइल के पहाड़ों, प्रभु यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से और नालों और तराइयों से यूं कहता है, देखो मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा और तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों का नाश करूंगा। मेरे मित्रों, पहाड़ धर्मशास्त्र में सरकार के प्रतीक हैं, परंतु यहां आपको निर्धारित करना होगा कि वे प्रतीक रूप में प्रयोग किए गए हैं या यथार्थ में। मेरे विचार में यहेजकेल पहाड़ों ही की चर्चा कर रहा है जहां अशुद्धता वास करती थी। तुम्हारे पूजा के ऊंचे स्थानों का नाश करूंगा। उस देश में लगभग प्रत्येक पेड़ के नीचे देवी देवताओं की वेदियां बनी हुई थी जहां घोर अनैतिकता का राज्य था। यही कर्म अन्य जातियों के भी थे। परमेश्वर की प्रजा ने मूर्ति पूजा अपना ली थी। अतः परमेश्वर कहता है कि तुम्हें दंड दिया जाएगा, तुम्हारे बीच मैं तलवार चलवाऊंगा। तब हम आगे पढ़ते हैं यहेजकेल 6 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा हुआ है, तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी, और मैं तुम में से मारे हुओं को तुम्हारी मूर्तों के आगे फेंक दूंगा। मैं इसराइलियों के शवों को उनकी मूर्तों के सामने रखूंगा और उनकी हड्डियों को तुम्हारी वेदियों के आसपास छितरा दूंगा। मेरे मित्रों, यह बड़े ही दुख की बात है कि जर्मनी के यहूदियों ने यहेजकेल की पुस्तक नहीं पढ़ी थी। आरंभ में तो वे सब के सब हिटलर के पीछे हो लिए थे। इसराइल को जीवित एवं सच्चे परमेश्वर की ओर फिरना था और मनुष्य के साथ उसके व्यवहार की जानकारी प्राप्त करनी थी। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को गुमराह नहीं कर सकते हैं। दंड वह देता है और निश्चय ही वह दंड देगा। हम शांति लाना चाहते हैं, परंतु समस्याओं का समाधान करने की अपेक्षा हम समस्याओं को बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दंड देता है। आपके विचार में क्या परमेश्वर एक बूढ़ा देवता है जो बादलों पर सवार मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र है। अध्याय 1 में यहेजकेल ने परमेश्वर का दर्शन देखा। पहिए में पहिया परमेश्वर की गतिज ऊर्जा है जब वह अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। आग और आंधी दर्शाते हैं कि परमेश्वर हमारी पृथ्वी को दंड देने के लिए आ रहा है। परमेश्वर का यह रूप स्वीकार करना कड़वा घूंट है, परंतु कड़वा घूंट हमारे रोग दूर करता है। हमें यह कड़वा घूंट पीना है। हम एक पवित्र परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं, इसलिए हमें भी पवित्र बनने की आवश्यकता है, उसकी सुनने की आवश्यकता है। वह कभी भी गलत नहीं होता है, गलत तो हम हो जाते हैं। क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? परमेश्वर कहता है, मैं इसराइल को दंड दूंगा और यह मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे खेद है कि इसराइल अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था, जैसा कि आज भी हम में से कई लोग गलती करने के बावजूद भी अपने आप को निर्दोष बताने की कोशिश करते हैं। हम आगे देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बचे हुओं का उद्धार, अर्थात जो लोग बंधुआई में ले जाए गए और कुछ लोग बच गए थे, उनके उद्धार के बारे में हम देखते हैं। यहेजकेल 6 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, तो भी मैं कितनों को बचा रखूंगा, इसलिए जब तुम देश देश में तितर बितर होगे, तब जाति जाति के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे। इसराइल में कुछ लोग अब भी परमेश्वर के निष्ठावान थे। संपूर्ण देश परमेश्वर से दूर हो गया था, परंतु एक छोटा समूह अब भी निष्ठावान था। आज मुक्त विचारों ने अधिकांश कलीसियाओं को अपने अधीन कर लिया है, परंतु परमेश्वर के भक्त अभी भी हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य जनों को देखता है। यहेजकेल के पुस्तक 6 अध्याय उसके 9 पद में हम पढ़ते हैं, वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे, और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है, और व्यभिचारिणी की सी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी हैं, जिससे यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की हैं, वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें से वे बंधुए होकर के जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे। ये लोग क्या करेंगे? वे परमेश्वर के गवाह होंगे। जी हाँ, यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है। इसका अधिक उचित अनुवाद होगा, जब मैं उनके व्यभिचारी हृदयों को जो मुझसे दूर हो गए हैं तोड़ दूंगा। वे परमेश्वर की प्रजा हैं, परंतु उन्होंने व्यभिचार किया। जैसा कि आज कई लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, परंतु व्यभिचारी जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु जब अपने कलीसिया को उठा लेगा, और तब जो कलीसिया बचेगी उसे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 17 में वेश्या कहा गया है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की हैं, वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। मेरे मित्रों, यह दंड के कारणों में से एक था, परंतु आज हम इस कारण पर ध्यान नहीं देते हैं। इसका अर्थ यह है कि और अधिक दंड दिया जाएगा, और यह दंड महाक्लेश के समय का होगा। उस समय मनुष्य दांतों तले उंगली दबाएगी। आप सोचते होंगे कि उस समय पश्चाताप का ज्वार उठेगा, परंतु ऐसा नहीं है। वे नहीं करेंगे और वे कठोर बने रहेंगे। यहेजकेल के युग में भी स्वयं से घृणा करने वाले लोग तो थे, वे परमेश्वर के संबंध में थे, अतः पश्चतापी थे। परमेश्वर के भक्त सदा ही ऐसे होते हैं। यदि आप शैतान की चाल में आकर स्वयं से घृणा न करें, तो आप परमेश्वर के जन नहीं हैं। यहेजकेल की पुस्तक 6 अध्याय उसके 10 पद में लिखा हुआ है, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं, और उनकी सारी हानि करने को मैंने जो यह कहा है उसे व्यर्थ नहीं कहा है। लिखा है कि तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मेरे प्रियो, इस अध्याय में परमेश्वर 3 बार ऐसा कहता है और यह दंड का एक और परिणाम है। हम अपने समय में यह परिणाम नहीं देखते हैं। परमेश्वर के हाथ को देखने की अपेक्षा हम कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है। मनुष्य का विवाद है कि यदि परमेश्वर है तो वह सहायता अवश्य करेगा। मेरे मित्रों, यह विचार हमारे मन में कहां से आया? परमेश्वर पाप का दंड दे रहा है, मनुष्य इसका विरोध करता है। उन्हें दंड देने वाला परमेश्वर स्वीकार्य नहीं है। आप चाहें तो अपनी समझ का ईश्वर बना सकते हैं, परंतु पवित्र परमेश्वर तो है ही जो दंड देता है। आप चाहते हैं कि वह हट जाए, परंतु वह नहीं हटेगा, क्योंकि वह आपके पाप का दंड वह आपको देगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। यहेजकेल के पुस्तक 6:13 में हम पढ़ते हैं, जब हर एक ऊंची पहाड़ी और पहाड़ों की हर एक चोटी पर और हर एक हरे पेड़ के नीचे और हर एक घने बांज वृक्ष की छाया में जहां जहां वे अपनी सब मूर्तों को सुखदायक सुगंध द्रव्य चढ़ाते हैं, वहां उनके मारे हुए लोग अपनी वेदियों के आसपास अपनी मूर्तों के बीच में पड़े रहेंगे, तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मेरे मित्रों, हिटलर के सताव के कारण अनेक यहूदी परमेश्वर की ओर फिरे थे और इसके परिणाम स्वरूप आज वहां अनेक अद्भुत विश्वासी भी पाए जाते हैं। हम उनके बारे में भूल गए हैं और उनकी चर्चा भी लगभग नहीं के बराबर ही है। मुझे एक लड़की ने पत्र लिखा जिसके माता पिता गैस कांड में मारे गए थे। उसने लिखा कि वह भयानक अनुभव उसके उद्धार का कारण था। हमें परमेश्वर का हाथ देखना आवश्यक है। वह पवित्र परमेश्वर है। उसने अपने पुत्र को ना रख छोड़ा, परंतु हमारे लिए पाप बनकर मरने दिया। तो संसार में पापी जन कैसे सोच सकते हैं कि वे उसके दंड से बचेंगे, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है, परंतु वह पापियों से प्रेम करता है, क्योंकि वह चाहता है कि पापी उसकी ओर फिरें और वे पाप से मुक्ति को प्राप्त करें, अनंत शांति और जीवन को प्राप्त करें। लेकिन आज मनुष्य कठोर है, वह परमेश्वर की ओर फिरना नहीं चाहता है, परंतु पाप के ऊपर पाप करने के लिए दौड़ता है। मेरे प्रिय, क्या ही दुखद बात है। हम देखते हैं कि हर एक ऊंची पहाड़ी जहां वे अपनी सब मूर्तों को, परमेश्वर कारण बताता है कि उसने उन्हें दंड क्यों दिया। कुछ लोग आज भी उसे दूध और शहद का स्थान कहते हैं। भ्रम में ना रहें, आज वह स्थान दूध और शहद का स्थान नहीं है। जी हां, वे परमेश्वर की ओर नहीं फिर रहे हैं। इस कारण उस देश पर आज भी परमेश्वर का दंड है। यहेजकेल की पुस्तक 6:14 में लिखा हुआ है, मैं अपना हाथ उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे घरों समेत जंगल से ले रिबला तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। मेरे मित्रों, मैं रिबला के बारे में तो नहीं जानता, परंतु यरूशलेम और यरीहो के बीच का स्थान जानता हूं। मेरे विचार में यदि उनकी सुरक्षा की बात न हो तो इसराइल सहर्ष वह स्थान अरबों को दे देगा जो वहां रहते हैं। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर के दंड का उद्देश्य यही है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं तो निश्चय ही परमेश्वर मुझे और आपको मौका देता है कि हम उसकी ओर फिरें। यदि हम नहीं फिरते हैं तो अंततः परमेश्वर हमारे पापों के लिए, हमारे कर्मों के लिए दंड देता है। आप इस बात को ना भूलें कि परमेश्वर न्यायी है। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, जितने बड़े पाप क्यों ना कर रहे हो, वह आपको इसका दंड अवश्य देगा, आज नहीं तो कल। इसलिए आप ये ना सोचें कि आप बच गए हैं। परंतु आज आपके लिए मौका है कि आप परमेश्वर के द्वारा से उस दंड से बच सकते हैं। कैसे? जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उससे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, अपने पापों को उसके सामने में मान लेते हैं कि प्रभु मैंने पाप किया है और इससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, तब वह आपकी सहायता करते हैं और निश्चय ही आपको आपके पापों के बंधन से छुटकारा देते हैं, मुक्ति देते हैं, आपके जीवन में शांति प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमें उद्धार देने के लिए ही आया था। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको निर्णय लेना है कि हम किस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ें। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मैं जितना खामोश रहा, मेरा गम उतना ही बढ़ा। मैं जितना खामोश रहा, मेरा गम उतना ही बढ़ा। रात और दिन मुझ पे खुदा, हाथ तेरा भारी था। मैंने अपनी खता को माना, अपनी बदकारी को जाना। मैंने अपनी खता को माना, अपनी बदकारी को जाना। मेरे खुदाया, मेरी खता को तूने माफ किया। शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा। मुबारक है जिसके गुनाह धुल गए, है मेरे जब तू खुदा, क्यों ना करूं मैं तुझसे दुआ।